وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتم الحج والعمرة لله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت نے اپنے کرم اور احسان سے ایک مرتبہ پھر وہ دن عطا فرمایا کہ جب ہم محبوب حقیقی کے اس گھر کے قریب موجود ہیں. یہ فقط اللہ رب العزت کا کرم اور احسان ہے. اس گھر کی حاضری اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے، اموال کی وجہ سے نہیں ہوتی. اگر مال کے ذریعے ہوتی تو دنیا کے مالدار لوگ زیادہ سے زیادہ حجیں اور عمرے کرتے، جبکہ ہم ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے اتنا کچھ دیا کہ اگر وہ چاہیں تو روزانہ اپنے ذاتی طیارے پر احرام باندھ کر اس جگہ آ کر عمرہ کر کے واپس جا سکتے ہیں، لیکن ایسے لوگوں کو کئی مرتبہ زندگی میں ایک دفعہ بھی توفیق نصیب نہیں ہوتی. کلمہ بھی پڑھتے ہیں، مال بھی بہت ہے، مگر توفیق عمل نہیں. یہ توفیق عمل اللہ کی رحمت سے ہوتی ہے. ہم میں سے کتنے ایسے ہیں کہ جن کے پاس عمرے کا پورا زاد راہ موجود نہیں تھا، کچھ پیسے اکٹھے کیے، کچھ قرض لیے، کچھ جمع کیے، اللہ نے سبیل بنا دی، آج موقع مل گیا. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہاں کی حاضری اللہ رب العزت کے کرم اور اس کے فضل ہی سے ہو سکتی ہے، اور یہ اس کا فضل اور احسان کہ اس نے ہمیں یہاں پہنچا دیا. جتنا اس کا احسان مانے اتنا کم ہے. اس سفر میں تین باتیں نہیں ہونی چاہیے. سب سے پہلی بے صبری. کئی مرتبہ انسان چھوٹی چھوٹی باتوں پر بے صبرا ہو جاتا ہے. وقت پہ پانی نہ ملا ٹھنڈا، وقت پہ کھانا نہ ملا، بس میں بیٹھتے ہوئے اچھی سیٹ نہ ملی، کوئی اور چیز خلاف طبیعت ہو گئی، تو بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے. یہ چیز انسان کے سفر کے اجر کو کم کر دیتی ہے. کبھی بھی بے صبری کا مظاہرہ نہ کریں. آپ سوچیں کہ بالفرض جب اللہ رب العزت کے ہاں قبولیت ہوئی تھی عمرے کے سفر کی، اس وقت اگر کوئی ہمیں یہ کہتا کہ بھئی عمرے کے سفر کی اپروول دینی ہے، مشقتیں آئیں گی، برداشت کرو گے تو دے دیتے ہیں، نہیں کرتے تو نہیں دیتے. तो हम उस वक्त ये कहने को तैयार होते हैं कि अल्लाह उल्टा लटक के भी अगर वहां हम पहुंच सकें तो आप हमें अप्रूवल दे दीजिए, प्लीज आप मेहरबानी कर दीजिए। उस वक्त हमारी ये हालत होती है। और ये भी देखो अल्लाह का कितना करम है कि अगर वो मालिकुल मुल्क ये कानून बना देता कि मेरे दरबार में हाजिरी के लिए तुम्हें आग के एक दरिया में से गुजर के आना पड़ेगा, वो कानून बना सकता था। उसने बनी इसराइल के लिए कानून बना दिया कि तुम्हारी तौबा तब कबूल करेंगे, फक्तुलु अनफुसकुम, हम अंधेरा कर देंगे, तुम अपने आप को छुरिया मारो, खून निकाल के दिखाओ। तो बनी इसराइल के लिए कानून बन गया, कुरान इस पर गवाही दे रहा है। वो मालिकुल मुल्क इस वक्त इख्तियार रखता है, मगर उसने तो सिर्फ इतना कह दिया, हाँ एहराम बांधने के लिए बस पानी से गुसल कर लो, मगर नियत करो कि तुम आज के बाद नफरमानी नहीं करोगे, हम तुम्हारे इसी गुसल को ही कबूल कर लेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा, ये कितना अल्लाह का करम और एहसान है कि जिसने अपने दरबार में हाजिरी इतनी आसान बना दी। तो एक तो बेसब्री का मुजाहरा नहीं करना, वरना तबीयतें होती हैं ना, जरा जरा सी बात पे झंझनाहट होती है, ये क्यों है, ये क्यों है। और अजीब इम्तहान ये है कि आज के दौर में चूंकि तन आसानी का दौर है और मन मानी का दौर है, शैतान ने एक नई टर्म निकाल दी है, वीआईपी उम्रा। हम तो जी वीआईपी उम्रा करेंगे, हम तो वीआईपी हज करेंगे। या अल्लाह, एक नौकर, एक गुलाम अपने मालिकुल मुल्क के दरबार में हाजिर होना चाहे और ये तमन्ना रखे कि वीआईपी तरीके से जाऊंगा, अल्लाह अकबर कबीरा, ये लफ्ज लेना ही मेरी नजर में खता है कि अल्लाह के दरबार में हाजिरी और तमन्ना रखे वीआईपी नहीं। कहते हैं ना कि मालिक इब्न दिनार रहमतुल्लाह अलैह गर्मी के मौसम में दोपहर के वक्त घर से निकले, चिलचिलाती धूप थी, तो देखते क्या है कि एक नौजवान है जो टांगों से माजूर है और अपनी सुरीनों के बल बैठा हुआ घिसकता हुआ चल रहा है। गर्मी इतनी ज्यादा थी कि चेहरा सुर्ख है उसका, पसीने में शराबूर। जब करीब से गुजरे तो सलाम दुआ हुई, तो मालिक अपने दिनार से पूछा कि नौजवान कहाँ जा रहे हो? उसने कहा कि बैतुल्लाह की ज्यारत का इरादा है। कहने लगे कि भाई दोपहर का वक्त है और इतनी सख्त गर्मी है, तुम मेरे यहाँ थोड़ी देर रुक जाओ, जब सूरज गुरूब होगा या धूप ठंडी हो जाएगी तो फिर चले जाना। उसने कहा मालिक अब्द दीनार, आप तो टांगों से सफर करते हैं और मैं तो घिसट घिसट के सफर करता हूँ, मुझे डर इस बात का है कि अगर मैं कहीं रुक गया तो ऐसा ना हो कि इधर से अय्याम हज आ जाएं और मैं अभी रास्ते में हूँ, मैं रुकना नहीं चाहता। तो मालिक अपने दिनार ने जवाब में कहा कि अच्छा, हम तुम्हारे लिए सवारी का बंदोबस्त कर देते हैं, तुम सवारी पे सवार हो के जरा तेज सफर कर लेना। जैसे ही ये बात की तो उस नौजवान ने जरा गुस्से की निगाह से देखा मालिक अपने दिनार, मैं तो आपको बड़ा कलमन समझता था, ये आपने कैसे बात कर दी? पूछा क्यों? कहने लगा कि मुझे एक बात बताओ कि अगर कोई गुलाम अपने आका को नाराज कर बैठे और फिर इरादा करे कि मैं अपने मालिक को जाकर मनाऊं, तो ये बताओ कि उस गुलाम को ये बात जेब देती है कि सवारी पे सवार होकर जाए या ये अच्छा है कि वो घिसट घिसट के मालिक के सामने हाजिर हो जाए। अल्लाह अकबर। हमारे उन अकाबिर का ये हाल था, और वाकई अल्लाह ताला यही चाहते हैं कि मेरा बंदा मेरे सामने ऐसी आजजी के साथ आए। और इसकी दलील कुरान अजीम शान में से अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि मेरे इस दरबार में हाजिरी का कानून उलाइका मा कान लहुम अन यदखुलूहा इल्ला खौइफी, उनको चाहिए था कि मेरे घर में दाखिल होते मगर उनके दिल मेरे खौफ से सहमे हुए होते। बड़े के दरबार में जाए ना तो दिल पे एक रोब होता है। अल्लाह ताला भी यही चाहते हैं कि ये मेरे दरबार में आए तो इनके दिलों पे मेरी अजमत हो, मेरा रोब हो। किस मालिक के दरबार? अली रजी अल्लाह ताला अन्हो मस्जिद में कदम रखते थे तो रंग पीला होता था। किसी ने पूछा कि हजरत बड़े बड़े मार्कों में आप नहीं घबराते मस्जिद में दाखिल होते? फरमाया तुम्हें पता है किस मालिकुल मुल्क के दरबार में मैं दाखिल हो रहा हूं? सुफयान सौरी रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद में दाखिल होने लगे तो बायां पांव अंदर रख दिया, आवाज आई या सौर ओ बैल, रज खा के गिर गए। फिर ये लफ्ज इतना अच्छा लगा कि पूरी जिंदगी इसी नाम के साथ गुजार दी और अपने आप को सुफयान सौरी कहलवाया करते थे। और हम कई दफा मस्जिद में दाखिल होते हैं, हमें एहसास ही नहीं होता कि दायां कदम रखा या बायां कदम रखा। हमारे दिल दुनिया के मामलात में ऐसे फंसे होते हैं कि मस्जिद में दाखिल होकर एतिकाफ करने का पता ही याद ही नहीं होता। तो इसलिए ये VIP का जो लफ्ज है ये इस दरबार के लिए काबिल कबूल नहीं है। यहाँ तो अल्लाह के महबूब भी आए, इलाही अब्दुक वबनु अब्दिक वबनु अमतिक, अल्लाह तेरा बंदा, तेरे बंदे का बेटा, तेरी बंदी का बेटा। कितने आजजी भरी अल्फाज से अल्लाह के महबूब सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन अल्लाह के सामने फरियाद करते हैं। तो भाई इस सफर में बेसब्री का मुजाहिरा ना हो, नाशुक्री का मुजाहिरा ना हो, और किसी गुनाह का इर्तिकाब ना हो। ये तीन चीजें बहुत अहम हैं सफर की कबूलियत के लिए। बेसब्री ना हो, नाशुक्री ना हो, और तीसरा गुनाह ना हो। हत्तुल वसा कोशिश करें कि ये उम्रे का सफर है, इसकी कबूलियत तब होगी जब इस सफर के अंदर अल्लाह की नाफरमानी ना हो। अब इशा के बाद 10 बजे या 10:30 बजे के करीब इंशाअल्लाह हम उम्रे के लिए मस्जिद में जाएंगे। ये वो वक्त है कि जब इशा के बाद आम तौर पर लोग वापस घरों की तरफ आते हैं रात के आराम के लिए, खाना खाने के लिए, तो हरम जरा खाली होता है, धक्कम फेल नहीं होती। 10 से 11 के करीब अगर उम्रा शुरू किया जाए तो अंदाजन 2-2.5 घंटे लगते हैं, बहुत पुरसकून वक्त होता है। और हमने जो इतना माल खर्च किया या आने की इतनी तकलीफ उठाई वो इसी वक्त को कैश करवाने के लिए तो उठाई है। तो उम्रे को भुगताना नहीं चाहिए कि थकी हुई हालत है और जल्दी करो जी बस एहराम उतारे, नहीं ऐसा नहीं है, आए इसी मकसद के लिए है। अगर तबीयत ठीक नहीं आराम कर लो, थकावट है थकावट को दूर कर लो, फ्रेश होकर तबीयत हाजिर हो, दिल पुरसकून हो, और इंसान उस वक्त अल्लाह के घर में हाजिर हो। ये अजीब आशकाना सफर है, आने से पहले तज़करा करते जुबान नहीं थकती, जब इस दर पे हाजिर होते हैं तो उसको देखते हुए आंख आंसू गिराते नहीं थकती। जी चाहता है उस महबूब हकीकी के सामने अपने दिल की हाल खोल करके। तो पांच बातों का आपने ख्याल रखना है सिंपल। कौन सी पांच बातें? कि जब मस्जिद हराम में आप दाखिल होंगे तो अल्लाह की अजमत को दिल में रखते हुए मस्जिद की दुआ पढ़कर एतकाफ की नियत करेंगे। नवई तो सुन्नत अल एतकाफ मा दुमत फी हाज़ल मस्जिद। और अगर अरबी में नहीं आती तो दिल में वैसे नियत कर लें कि मैं जब तक इस मस्जिद में हूं नफल एतकाफ की मैं नियत करता हूं। तो आपको उम्रे का सवाब भी मिलेगा और जितनी देर मस्जिद में रहेंगे नफली एतकाफ का सवाब भी मिलता रहेगा। जब जितनी बार भी आप मस्जिद में दाखिल हों एतकाफ की नियत जरूर करें। दूसरी बात कि जब हम जाएंगे बैतुल्ला शरीफ पर पहली नजर पड़ेगी। उलमा ने लिखा है कि बैतुल्ला शरीफ पर पहली नजर पड़ते हुए इंसान जो दुआ करता है अल्लाह रब्बुल इज्जत के हाँ वो दुआ कबूल होती है। लिहाजा पहली नजर में वो दुआ मांगे जिसमें दीन और दुनिया की सब नेमतें मिल जाए। अल्लाह से अल्लाह को मांगे, दुनिया आखरत की आफियत मांगे, इज्जतें मांगे। किसी ने इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि हजरत मुझे पहली नजर में क्या दुआ मांगनी चाहिए? तो हजरत ने अजीब जवाब दिया, फरमाया कि पहली नजर में तुम ये दुआ मांगना कि या अल्लाह आज के बाद मैं जो भी दुआ मांगू मेरी हर दुआ कबूल हो जाए। कैसी अजीब दुआ कह दी। सुभान अल्लाह, वाकई एक फकीह की नजर ही इस तह तक पहुंच सकती है। पहली नजर भी आपकी कैसी बला की थी, हम आज तक वो चोट हैं दिल पर लिए हुए। ये पहली नजर भी अजीब होती है, बैतुल्ला पर पहली नजर डालते हुए मांगना। बहरहाल इसमें फुकहा ने लिखा कि पहली नजर में जो दुआ मांगे तो भी मुख्तसर सी कोई दुआ हो जो जामे दुआ हो। लेकिन अब ये मतलब नहीं कि जब पलक छपक गई तो अब दुआ खत्म, नहीं, दुआ मांगते रहें। तो हम जब जाएंगे तो मताफ में जब पहुंचेंगे तो मताफ में पहुंचने तक निगाहें झुकाए रखेंगे। मताफ में पहुंचने के बाद फिर हम सामने देखेंगे, बैतुल्ला पर नजर पड़ेगी तो फिर दुआ मांगेंगे और कुछ देर दुआ मांगते रहेंगे। ये मालिकुल मुल्क का दरबार है, दुनिया के बादशाहों के पास जाओ वो देते हैं थोड़ा थोड़ा, फिर कहते हैं जी बड़ी मजबूरी है देना चाहता हूँ, बस हालात ठीक नहीं मुल्क के, और इस वक्त हमारे पास इतना बजट नहीं उसकी भी कमी है। तो दुनिया के बादशाहों को बजट की कमी और हालात की नाहमवारी पेश आती है। इस मालिक और मुल्क का दरबार वो है मांगने वाले को जो वो मांगता है अल्लाह उसकी मर्जी के मुताबिक अता भी कर दे तो उसके खजाने में इतनी भी कमी नहीं आती जितना सुई को समुंदर में डबो कर निकालें तो समुंदर के पानी में कमी आ जाती है। अल्लाह के खजाने में इतनी भी कमी नहीं है। तो इसलिए खूब मांगिए अल्लाह ताला से, ये असल में मांगने ही का सफर है। तो उस वक्त दुआएं मांगना, ये दुआएं पहले से सोच के रखें कि हमने ये मांगना है ये मांगना है। बहरहाल मांगते हुए दिल से दुआ निकले, दुआएं उस वक्त पढ़नी नहीं दुआएं मांगनी है। दुआ पढ़ना और चीज होती है, दुआ मांगना और चीज होती है। तो बस आज तो मांगेंगे दिल से दुआ निकलेगी। तीसरी बात कि फिर हम अपने एहराम का जो हमारे पास है इल्तिबा करेंगे। मर्दों के लिए ये होता है, औरतों के लिए नहीं होता। इल्तिबा क्या होता है कि अपने दाएं कंधे को नंगा कर लेना। आम हालात में तो कवर्ड रखते हैं, लेकिन जब वहां जाएंगे तो हम अपने कंधे को यूं नंगा कर लेंगे। इसको कहते हैं इल्तिबा। ये उस वक्त करना है जब भी आदमी एहराम में हो, तवाफ करना चाहे, जिस तवाफ के बाद सही हो, तो फिर उसको तवाफ के अंदर यूं इल्तिबा करना होता है हालत एहराम में। तो एतकाफ और दुआ ये पहली बात हो गई, और इल्तिबा ये दूसरी बात हो गई। फिर तीसरी चीज है, उसको कहते हैं इस्तिकबाल। इस्तिकबाल कहते हैं कि हिजर अस्वद के सामने हाजिर होना। चुनाचे हिजर अस्वद का निशान भी बना हुआ है, सब्ज लाइट भी एक जगह लगी हुई है। वहां पहुंचकर बिल्कुल हम हजर अस्वद के महाज में आ जाते हैं, और जब हजर अस्वद के महाज में आ जाएं, तो उस वक्त जैसे हम नमाज में तकबीर तहरीमा के लिए हाथ उठाते हैं ना, कानों की लौ तक लाते हैं, इस तरह अपने हाथ कानों की लौ तक लाकर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द ये कहना, इसको इस्तिकबाल कहते हैं। यानी अब आप बैतुल्लाह के वो जो हजर अस्वद अलग कोना है उसके बिल्कुल सामने आ गए। तो एक एतकाफ, दूसरा इज्तिबा, और तीसरा इस्तिकबाल। ये इस्तिकबाल गोया अब आपके तवाफ की नियत हो गई। जब इस्तिकबाल कर लिया तो आप नियत भी कर लें कि मैं भी नवई तो अन अतूफ, मैं तवाफ की नियत कर रहा हूं। अब आप तवाफ के लिए बिल्कुल तैयार हो गए। इसके बाद एक अमल है जिसको इस्तिलाम कहते हैं। इस्तिकबाल अलग सुन्नत है और इस्तिलाम अलग सुन्नत है। इस्तिलाम क्या होता है? दूर से सलाम करना। अब आप हजर अस्वद से दूर हैं, अगर तो करीब हो तो दोनों हाथ हजर अस्वद की साइडों पर रखें और उसको बोसा दें बगैर चटखारे के, आवाज ना निकले। तो हजर अस्वद को इस तरह बोसा देना ये भी सुन्नत है, लेकिन हर बंदा तो करीब नहीं होता कि वो बोसा दे सके। तो शरीयत ने इसकी रियायत रखी, फरमाया कि अगर तुम दूर हो तो दूर से ही इशारा अगर कर लोगे तो तुम्हें सवाब मिल जाएगा। उसका तरीका क्या है कि आप अपने दोनों हाथों को ऐसे करें कि जैसे हजर अस्वद के ऊपर रख रहे हैं, और दोनों हाथों को फिर बोसा दे लें। इसको इस्तिलाम कहते हैं। ये करना भी सुन्नत है। आज के दौर में छोटा बच्चा दूर होता है ना, तो उसको प्यार करने के लिए यूं कर देते हैं। ये जो फ्लाइंग किस है ना, इसी का दूसरा नाम इस्तिलाम है। कि अब आप हजर अस्वद के करीब तो नहीं है, दूर से ही फ्लाइंग किस दे रहे हैं। ये इस्तिलाम हो गया। लेकिन इस इस्तिलाम के वक्त अपने दिल की पूरी तवज्जो अल्लाह की तरफ रखें। इसलिए कि हदीस पाक में आता है कि हजर अस्वद यमीनुल्लाह फिल अर्ज, जमीन में अल्लाह का दाया हाथ है। तो जैसे कोई अपने महबूब से मिलने जाए तो उसको सलाम करता है, मुसाफा करता है, गोया हाजी और उमरा करने वाला हजरे अस्वद के इस्तिलाम के जरिए मालिकुल मुल्क से मुसाफा करने की सआदत पाता है। इसलिए उलमा ने लिखा है कि हजरे अस्वद इंसान के दिल की हालत को उस वक्त महफूज कर लेता है, फोटो ले लेता है, आज वीडियो कैमरे के सामने आप आते हैं ना, वो भी तो पत्थर की तरह नजर आता है ना, शीशा सा। वीडियो कैमरे के सामने आए तो शक्ल महफूज, और हजर अस्वद के सामने आए तो दिल की हालत महफूज, कि दिल में माँ सिवा की मोहब्बत है या अल्लाह की मोहब्बत का गलबा है। और रवायत में आता है कि जिस हालत में हजर अस्वद का इस्तलाम किया जाएगा, क्यामत के दिन उसी हालत पर मोमिन अपने रब से मिलेगा। ये डाटा निकालेंगे, ये फाइल खोलेंगे, मेरे बंदे दुनिया में आया था ना मुझसे मिलने के लिए, उस वक्त तो तेरे दिल में किसी ने घर किया हुआ था, किसी की मोहब्बत समाई हुई थी, कोई तुम्हारे दिल पे छाया हुआ था, उस वक्त तो तुम्हारा दिल बुतखाना बना हुआ था। बुतखाने में भी बुत होते हैं और कई दफा दिल में भी बुत आ जाते हैं इंसानों के, तो तुम्हारे दिल तो बुतखाना था, मेरे घर में कैसे आ गए इस शिर्क की नजासत को लेकर। तो इसलिए इस्तलाम से पहले अपने दिल को माँ सिवा से खाली कर लीजिए, हर गैर से बेतमा हो जाइए। अगर दिल में असरात हैं भी तो तौबा के जरिए उन असरात को धो लीजिए, ताकि उम्रा कबूल हो जाए। तो एक एतका, दूसरा इल्तबा, तीसरा इस्तलाम, ये चार चीजें हो गई। चार चीजों के बाद फिर पांचवी चीज होती है रमल। रमल क्या कि मर्दों को तवाफ के पहले तीन चक्रों में जरा जमकर कदम उठाने होते हैं, जैसे पहलवान उठाते हैं। ये नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारक है। किताबों में लिखा है कि जब नबी अलैहिस्सलाम ने तवाफ फरमाया तो कुफार देख रहे थे, तो सहाबा थके हुए भी थे, कमजोर भी थे, तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफार के सामने इस्लाम की अजमत को जाहिर करने के लिए उस वक्त जरा पहलवानों की तरह ये अमल किया, और मेरे मालिक को ऐसा पसंद आया कि आने वालों के लिए इसको सुन्नत बना दिया गया। तो आज भी उस सुन्नत को जो है वो अमल किया जाता है। कोई मुफ्ती साहब हों, कोई सूफी साहब हों, कोई पीर साहब हों, कोई बुजुर्ग साहब हों, हर एक को पहलवानों की तरह ये अमल करना पड़ता है। अल्लाह को पसंद जो यही है, तो ये रमल कहलाता है। अब ये रमल ऐसा है कि कई नौजवान इसमें दौड़ना शुरू कर देते हैं। नहीं, दौड़ने को रमल नहीं कहते, दौड़ने को रमल नहीं कहते, रमल कहते हैं जरा तेज कदम उठाने को। औरतों को इज्तबा और रमल का सवाब नियत से ही मिल जाता है, बिन किए ही मिल जाता है, मर्दों को ये करना पड़ता है। तो उस वक्त थोड़ा हिम्मत के साथ, चुनाचे ये रमल कैसे करना है जरा आप तवज्जो कीजिएगा। बाद लोगों को देखा कि वो तेजी के साथ दौड़ना शुरू कर देते हैं, बाद लोगों को देखा कि वो इस तरह की हरकत करते हैं, नहीं इसको भी इस्तवाल, इसको भी रमल नहीं कहते। आपने देखा होगा पहलवान जब कुश्ती करते हैं ना आपस में, एक दूसरे के सामने आते हैं तो वो थोड़ा सा ऐसे झुक के ना एक दूसरे के सामने ऐसे करते हैं, इसको रमल कहते हैं, ये पहलवान पहलवान की तरह। तो आप आहिस्ता कदम उठाए, तेज मत उठाए, आहिस्ता, मगर ये हालत ऐसे, इसको रमल कहते हैं कि इंसान अपने सीने को जरा इसे कुशादा करे और इस तरह कदम उठाए कि जैसे हिम्मत के साथ उठा रहा होता है। जब मेरे अल्लाह को ये अमल पसंद है तो हम इस अमल को भी करेंगे। होना तो ये चाहिए, کہ مومن کی زندگی ایسی تقوی بھری ہو کہ اللہ پوری زندگی کفار کے سامنے رمل کی حالت میں گزارنے کی توفیق عطا فرما دے. تو یہ پانچ چیزیں ہوئیں, ان کو یاد کر لیجئے کہ جن کو ہم نے آج کرنا ہے. ایک, مسجد میں داخل ہوتے ہوئے اعتکاف کی نیت. پھر اس کے بعد دوسرا التباء, تیسرا استقبال, چوتھا استلام, اور پانچواں رمل. تین چکروں میں یہ رمل ہوتا ہے, تین چکروں کے بعد رمل ختم ہوتا ہے, لیکن التباء پورے طواف میں رہتا ہے, اور باقی نارمل چل کے دعائیں مانگتے ہوئے طواف کرنا ہوتا ہے. طواف میں وضو کا ہونا ضروری, اگر وضو ٹوٹ گیا تو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا, اگر تھوڑے چکر تھے تو پھر پورا طواف پھر کرے, اور اگر چار چکر پورے ہو چکے تھے یعنی اکثر حصہ مکمل ہو چکا تھا تو باقی چکر وضو کر کے پھر شروع کیے جا سکتے ہیں. طواف میں اگر کوئی آدمی کہیں رکنا چاہے مجبوری معذوری کی وجہ سے, رک بھی سکتا ہے, لیکن پھر وہیں سے طواف کو شروع کرے. طواف کے دوران نہ قبلہ کی طرف سینہ ہو نہ قبلہ کی طرف پیٹھ ہو, دیکھے بھی نہ بیت اللہ کی طرف طواف کے دوران. جیسے نماز عبادت ہے تو نماز کے اندر آپ ادھر ادھر نہیں دیکھتے, وہ خشوع کے خلاف ہے. اسی طرح طواف کے دوران ادھر ادھر دیکھتے رہنا یہ بھی خشوع کے خلاف ہے. توجہ اللہ کے ساتھ بس آپ اپنی دعائیں مانگتے ہوئے, جیسے شمع کے گرد پروانہ چکر لگاتا ہے, ہم بھی اس شمع حقیقی کے گرد پروانے کی طرح چکر لگائیں. اور اگر بالفرض جم گھٹے کی وجہ سے کوئی ایسا دھکا لگے کہ بھئی ادھر رخ ہو جائے یا پیٹھ ہو جائے, تو جتنے قدم رخ کر کے گزارے وہ طواف میں شامل نہیں ہوں گے. تو علماء نے لکھا کہ دو صورتیں ہیں, یا تو پیچھے ہٹے اور دوبارہ جیسے پیچ جوڑ لگاتے ہیں وہاں سے پھر جوڑ لگائے, اور اگر ایسا ممکن نہ ہو تو پھر اس چکر کو گنے ہی نہ, ایک چکر فالتو لگائے تاکہ سات چکر کامل ہوں طواف کے. طواف کے دوران دعا مانگنا چاہیے. بعض لوگ تلاوت کرتے رہتے ہیں, گو تلاوت ایک بہت اعلیٰ عمل ہے, مگر طواف کے دوران دعا مانگنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے. اپنا اپنا وقت ہوتا ہے نا, یہ مانگنے کا وقت ہے, اللہ سے مانگیے. بیت اللہ کے دروازے کے سامنے سے گزرتے ہوئے ایسے مانگیے جیسے ایک سائل کسی شہنشاہ کے دربار پر دروازے پہ حاضر ہوتا ہے. اس کھلے در کا تصور کر کے اللہ سے مانگیے. دنیا کے بادشاہوں کے دروازے تو بند ہو جاتے ہیں نا, دفتر کے وقت کھلتے ہیں اس کے بعد بند, کوئی جانا بھی چاہے تو کہہ دیتے ہیں جی دفتر کا وقت ختم ہو گیا. واہ میرے مولا, تیرا بھی دروازہ کیا ہے, دن میں بھی کھلا رات میں بھی کھلا. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, نہ اللہ کو نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے, اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ مانگنے والا آ کر مانگے اور پروردگار کو اونگ آئے تو سننے والے کی فریاد کے سننے میں دیر نہ ہو جائے. یہ اللہ کو اونگ بھی نہیں آتی. رابعہ بصریہ اللہ کی نیک بندی, رات کے وقت میں جب تہجد کے لیے اٹھتی تو دامن پھیلا کر دعا مانگتی کہ اللہ دن آ گئی, دن چلا گیا رات آ گئی, بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے, تیرا دروازہ اب بھی کھلا ہے, میں تیرے سامنے اپنا دامن پھیلاتی ہوں. اس دروازے پر آ کر دنیا کے بادشاہ بھی دامن پھیلاتے ہیں, سب مانگتے ہیں. ایک اندھا مانگتا پھر رہا تھا, ایک دروازے پر آیا تو اس نے صدا لگائی, کوئی جواب ہی نہیں. تو غصے میں کہنے لگا کہ کس بخیل کا دروازہ ہے, کوئی جواب بھی نہیں دیتا. तो गुजरने वाले ने कहा कि ओ अंधे, तुझे क्या पता, ये तो मस्जिद का दरवाजा है। तो कहते हैं कि जब मस्जिद के दरवाजे पर उसने सुना ना कि मैं मस्जिद के दरवाजे पर आया, तो उस अंधे फकीर ने कशकोल जमीन पर फेंक कर दौड़ दिया। कहने लगा, अगर अल्लाह के दरवाजे पे पहुंच गया हूं, अब किसी और दरवाजे पे जाते मुझे शर्म आती है। हमसे तो अंधा फकीर ही अच्छा कि जिसने इस बात को समझ लिया कि अब मैं अल्लाह के दरवाजे पे पहुंच गया हूं। आज हम भी अल्लाह के दरवाजे पर पहुंचे हैं। इस दरवाजे पर पहुंचकर हम मांगे जो मांगते हैं, मांगने वाले का दामन छोटा होता है, देने वाले की देन हमेशा बड़ी होती है। तो पांच बातों का हमने ख्याल रखना है। एक, एतकाफ की दियत। दूसरा, इज्तिबा करना है। तीसरा, इस्तकबाल। चौथा, इस्तिलाम। और पांचवा, रमल। फिर तवाफ करना है, और तवाफ के दौरान फिर दुआएं मांगनी हैं मौका की मुनासबत से, जो जी में आए हर चीज अल्लाह से मांगे। अब इस मांगते हुए भी पांच बातों का ख्याल रखना। जब दुआएं मांगनी है तो दुआ मांगते हुए पांच बातों का ख्याल रखना। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में बैतुल्लाह के बारे में मुख्तलिफ बातों का इशारा फरमाया। उनमें से एक बात तो ये कि तुम जब यहां आते हो, लियशहदू मनाफिया लहुम, तो इस आयत से सामने आता है कि यहां आने से दुनिया के मुनाफे भी मिलते हैं। तो जब कुरान में गवाही मिल गई कि यहां आने से दुनिया के मुनाफे मिलते हैं, तो भाई मांगना चाहिए ना, फिर जी भर के मांगना चाहिए। अच्छा, बाद लोगों को देखा कि वो कहते हैं जी हम अल्लाह से, अल्लाह को मांगते हैं, दुनिया नहीं मांगते। ठीक है भाई, आप बड़े आला हाल वाले बुजुर्ग हैं कि आपको दुनिया की इतनी भी परवाह नहीं, और हम तो कमजोर हैं, हम तो मोहताज हैं, आखिरत की नेमतों के भी मोहताज और दुनिया की नेमतों के भी मोहताज। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारे जूते का तस्मा टूट जाए, तुम तस्मा भी अपने परवरदिगार से मांगो। हम तो उस कैटेगरी के बंदे हैं, मांगेंगे, हर चीज मांगेंगे, आप ही से मांगेंगे। मौला, जब हम बंदे ठहरे और आप हमारे रब हैं, तो हम सब कुछ आपसे मांगेंगे। छोटी चीज, बड़ी चीज, सब आपसे मांगना है। कोई ऐसा वक्त नहीं आ सकता कि जब हमारा दिल नेमतों से भर जाए। नहीं, बंदगी इसी को कहते हैं। हम मांगेंगे और हर चीज मांगेंगे और खूब डट के मांगेंगे। ये बुजुर्गों का बसा औकात हाल रहा है कि उन्होंने कहा कि बस अल्लाह से अल्लाह को मांगो। इब्ने फारिज रहमतुल्लाह अलैह का मशहूर शेर है कि जब मौत का वक्त करीब आया तो उनको जन्नत दिखाई गई, उन्होंने जन्नत से आंख हटा ली और शेर कहा, इन कान मंजिलती फिल हुब इंदकुम मा कद रई तो फकद दैया तो अय्यामी, कि अगर अल्लाह तेरी मोहब्बत में मेरे सारी जिंदगी की मेहनतों का सिर्फ यही बाग बगीचा ही जो है इनाम है, मैंने क्या पाया। मौला, मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी ही जाया कर दी, मुझे तो आप चाहिए। तो ये एक साहिब हाल बुजुर्ग की बात है। हमें तो अल्लाह भी चाहिए और उसके साथ जन्नत की नेमतें भी चाहिए, हमें तो सब चाहिए। मसला तो ये है कि हम अपने बारे में ये सोचें कि हमें सब कुछ चाहिए। ये है असल अबदियत। ये नहीं है कि हमें जन्नत नहीं चाहिए, हमें अल्लाह चाहिए। नहीं, अल्लाह भी चाहिए, जन्नत भी चाहिए, दुनिया की नेमतें भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। अब जरा तवज्जो फरमाइए, बुखारी शरीफ की रिवायत है, अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जमीनें भी अता की, बागात भी अता किए, औलाद से भी नवाजा, बीवियों से भी नवाजा, दुनिया की तमाम नेमतों से नवाजा। यूं समझें कि जैसे वक्त का सेठ होता है ना कोई, ऐसे सेठ बना दिया, इतनी नेमतों से नवाजा। एक वक्त आया कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम नहाने के लिए एक तालाब पर गए, नहर पर, तालाब पर। अब चूंकि वहां तो कोई करीब नहीं था, लिहाजा उन्होंने अपने कपड़े उतारे और तालाब में नहाना शुरू कर दिया। जब तालाब में नहा रहे थे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत से चिड़ियां आईं जो सोने की बनी हुई थी और आकर करीब करीब बैठने लग गईं। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जब देखा तो चिड़ियां पकड़ने लग गए, जिस्म पे कपड़े नहीं है, नहा रहे थे। अब इसी दौरान चिड़ियां आ गई, पकड़ रहे हैं, एक चिड़िया के पीछे, फिर दूसरी के पीछे, फिर तीसरी के पीछे। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मेरे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम, इतना कुछ दिया और इतने कुछ के बाद आप फिर इनके पीछे भागते फिर रहे हैं। तो अय्यूब अलैहिस्सलाम ने उस वक्त दुआ के लिए हाथ उठाए, ऐ अल्लाह, इतना कुछ पा लेने के बाद अभी भी मैं तेरी नेमतों का मोहताज हूं। बस हम यही बात सामने रखें कि इतना कुछ हासिल कर लेने के बाद भी अल्लाह मैं तेरी नेमतों का मोहताज हूं। हम अल्लाह की नेमतों के फिर भी मोहताज हैं। तो एक पांच नुक्ते हैं मांगने के लिए जिनका ख्याल रखना है। एक तो ये कि दुनिया की हर नेमत, जो परेशानी है दुनिया में, घर नहीं अल्लाह से घर मांगे, कारोबार अच्छा नहीं अच्छा कारोबार मांगे, दुनिया के अंदर कोई और परेशानी है, बीमारी है, मुसीबत है, परेशानी है, हर चीज के बारे में अल्लाह से मांगे। क्योंकि ये मुनाफे मिलने का मकाम है और मुनाफे से मुफस्सरीन ने यह मुराद दुनिया का फायदा लिया है, लिहाजा हम भी दुनिया की हर नेमत मांगे। तो एक पॉइंट मांगते हुए ये जहन में रहे, लियशहदु मनाफिया लहु। दूसरी बात, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने घर के बारे में फरमाते हैं, मुबारकम, ये बरकत वाला घर है। तो बरकत वाले घर से हम बरकतें अल्लाह की मांगे कि तेरे बरकत वाले घर में हाजिर हैं और तेरी बरकतों के तलबगार हैं। सेहत में बरकत, उम्र में बरकत, रिज्क में बरकत, इज्जत में बरकत, दीन में बरकत, औलाद में बरकत, हर नेमत में बरकत अल्लाह से मांगे। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से बरकतें आ जाती हैं तो अल्लाह ताला बंदे की जरूरियात को पूरा फरमा देते हैं, उसको मोहताज नहीं रहने देते किसी चीज और का, गनी कर देते हैं। तो मुनाफे भी मांगने हैं और बरकतें भी मांगनी है। ये दो बातें क्लियर हो गई अच्छी तरह कि दुआएं मांगनी है तो दुआ मांगते हुए पांच चीजों का ख्याल रखना है। उनमें से पहली चीज कौन सी? मुनाफे। अल्लाह से हमने दुनिया की जरूरतें और उनके मुनाफे मांगने हैं। और दूसरी चीज, अल्लाह रब्बुल इज्जत से हमने बरकतें मांगनी है। आज सेहत तो है, बरकत नहीं। उसका नतीजा क्या कि 25 साल का नौजवान भी बूढ़े की तरह थका हुआ, कहते जी बैठा हुआ उठता हूं आंखों में अंधेरा आ जाता है। ये 25 साल का नौजवान, और जो 30 35 40 में चले गए, किसी के घुटनों में दर्द है, किसी के कमर में दर्द। हमारी सेहतें ऐसी हैं ना, बरकत नहीं है आज। तो अल्लाह से बरकतें मांगनी है। कुव्वत हाफजा में बरकत नहीं, जरा सी कोई चीज याद करते हैं थोड़ी देर में भूल जाती है, जहन से निकल जाती है। तो मुनाफे मांगने हैं, दूसरा बरकत मांगनी है, तीसरा अल्लाह ताला कुरान मजीद में इस घर के बारे में फरमाते हैं मुबारकम व हुदल लिल आलमीन, और ये जहानों की हिदायत का मरकज है। तो हमने यहां अल्लाह ताला से हिदायत मांगनी है कि जब पूरी कायनात के लिए हिदायत का मरकज ये जगह है, ये मरकज तजल्लियात अल्लाह फिर आपने यहाँ पहुंचा दिया, अब बकिया जिंदगी हिदायत के ऊपर हमें जमाए रखी। मुनाफे मांगने हैं, बरकत मांगनी है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत से हिदायत मांगनी है। फिर अल्लाह ताला इस घर के बारे में कुरान मजीद में फरमाते हैं वमन दखलहु काना आमिना, जो इस घर में दाखिल हो गया वो अमन में आ गया। अमन से क्या मुराद? अमन से दो बातें मुराद, एक तो ये कि अल्लाह की नाराजगी से अमन में आ गया। भाई घर में तो उसी को बुलाते हैं ना जिसको अपना समझते हैं, ये दुनिया का दस्तूर है। जब किसी से कुछ नाराजगी होती है ना तो उसको घर आने से मना कर दिया जाता है। चुनाचे हमने देखा बाप बेटे को मना कर देता है, भाई भाई को मना कर देता है, रिश्तेदार को मना कर दिया जाता है, भाई आज के बाद घर ना आया करो हमारे। हत्ता के खाविंद अपनी बीवी को मना कर देता है, मेके चली जाओ आज के बाद मेरे घर में ना आओ। तो नाराजगी जब होती है तो घर में आने से मना कर दिया जाता है। घर में किसको बुलाते हैं? जिसको अपना समझते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें अपने घर बुला लिया, ये इस बात की दलील कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अपना समझते हैं, अल्लाह का देने का इरादा है। बच्चे को बुलाते हैं ना कुछ देने के लिए, अल्लाह ताला ने भी अपने बंदों को बुला लिया, आओ भाई तुम्हें भी दुनिया की कैंडियां दे दें, तुम ये लॉलीपॉप मांगते हो ना चूसते फिरते हो, आ जाओ तुम्हें दे देते हैं लॉलीपॉप, चूसते रहना, दुनिया की भी नेमतें दे देंगे आखिरत की भी नेमतें दे देंगे। तो हमने अल्लाह रब्बुल इज्जत से अमन मांगना है, ये अमन क्या होगा? अल्लाह की नाराजगी से अमन, जहन्नम की आग से अमन, शैतान के हमलों से अमन, और नफ्स की मकारियों से अमन, हर चीज से अमन, और कुफर के खौफ से अमन। आज तो वक्त ही ऐसा है, पूरी दुनिया में जहां चले जाओ कुफर दनदना रहा है। मुसलमानों के लिए इस्लाम पर जमे रहना मुश्किल होता जा रहा है। तो हम अल्लाह से अमन मांगे, तो ये अमन का नुक्ता जहन में रख के जब आप मांगेंगे अल्लाह ताला हर खतरे से अमन अता फरमाएंगे, दिल को पुरसकून फरमा देंगे। तो चार बातें हो गई। सबसे पहली बात मुनाफे, दूसरी बात बरकत, तीसरी बात हिदायत, चौथी बात अमन, और पांचवी नेमत जो हमने मांगनी है अल्लाह फरमाते हैं व अतिमुल हज वल उमरा लिल्लाह, हज और उमरा अल्लाह के लिए करो, यानी अल्लाह की रजा के लिए करो, अल्लाह को राजी करने के लिए। तो मकसूद तो उमरे का यही है ना, तो पांचवी नेमत अल्लाह से ये मांगे कि अल्लाह अब हमने उमरा किया, कोई गफलत रह गई, कोताही हो गई, सुस्ती हो गई, जैसे करना चाहिए था ना कर सके, मगर अब ये जैसा अमल भी है इसको कबूल करके हमें अपनी रजा अता फरमा दीजिए। अल्लाह से उसकी रजा मांगनी है कि हमने आप ही के लिए ये किया है, दुनिया के लिए नहीं किया, आपको मनाने के लिए, आप मान जाइए, आप राजी हो जाइए। अल्लाह ताला मेहरबानी फरमा देते हैं। सच्ची बात तो यह है कि हम ऐसी इबादत कर ही नहीं सकते जो अल्लाह के शायान शान हो। इमाम रब्बानी मुजद्दल सानी रहमतुल्लाह ने लिखा है, मैं अब बात मुकम्मल कर रहा हूं, उन्होंने लिखा है कि हम जितनी भी यकसुई से इबादत कर लें, कभी भी वो इबादत अल्लाह की शान के मुताबिक नहीं हो सकती, इसलिए कि शान इतनी ऊंची है, हम जो जोर लगा लें ये इबादत नीचे रह जाती है, अल्लाह की शान इससे भी बुलंद, इससे भी बुलंद, इससे भी बुलंद है। जब अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, मकाम इब्राहिम पर खड़े हुए फरमाया, माँ अबदना का हक का इबादत है, अल्लाह जैसी तेरी इबादत का हक था वो हक अदा हम नहीं कर सके, तो फिर हमारी इबादतों का क्या हाल है। लेकिन फिर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत बिन्नास लरऊफुर रहीम, वो बंदों के साथ रऊफुर रहीम है, वो मेहरबानी फरमा कर कबूल फरमा लेते हैं। तो इसलिए ये पांच दुआएं मांगनी है। तो पांच बातों का ख्याल तवाफ करते हुए और पांच नुक्तों का ख्याल दुआएं मांगते हुए, अगर इस तरह आपने दुआएं मांगी तो उम्मीद है इंशाल्लाह कि ये उम्रा आपका आपके लिए वाकई अल्लाह की रजा का सबब बन जाएगा, अल्लाह ताला हमसे राजी हो जाए और हमें यकसुई के साथ, अच्छे तरीके के साथ बेहतरीन उम्रा करने की तौफीक अता फरमाए। वक्त कम है, दुआ कर लीजिए। सुभान रब्बिल अलवहाब, اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اے مالک ہم آپ کے آج مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما۔ اے کریم آقا ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما، اے رب کریم ہمیں صحیح خشوع اور خضوع کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے اس عمرے کے سفر کو قبول فرما۔ میرے مولا بیت اللہ میں جا کر جو دعائیں ہمارے لیے بہتر ہیں وہی ہمیں مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا جھولیوں کو بھرپور فرما، خالی دامن آئے ہیں اللہ ان دامن کو بھرپور فرما۔ میرے مولا اپنی رضا عطا فرما، جو ایام زندگی کے یہاں ٹھہرنے کے آپ نے لکھے ہیں اللہ ان کو پورے آداب کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دس بجے بابے عبدالعزیز کے اندر سب جمع ہو جائیں۔ بابے عبدالعزیز سے مسجد کے اندر جب داخل ہوں گے تو سیڑھیاں اترتے ہی رائٹ سائڈ پہ برامدے میں وہیں بیٹھ جائیں، انشاءاللہ حضرت آن بکا تم وہیں تشریف لے آئیں گے تو پھر انشاءاللہ حضرت جی کی معیت میں عمرے کے لیے انشاءاللہ چلیں، انشاءاللہ۔